आतिफा हेलो, पुलाद ने तो तुम्हारे फोन से मुझे फोन किया है।
क्या मेरे फोन से? रुको जरा। मनहूस कहीं का।
क्या हुआ है?
सुबह जब मुझसे एड्रेस मांग रहा था तो अब्बू के बारे में कुछ कह रहा था, मेरे ख्याल में उसी वक्त मेरा फोन उठा लिया होगा। मोहम्मद, मैं बाद में फोन करती हूँ। मनहूस इंसान।
अच्छा पोलाद खान, ये बातें जो तुमने बताई उनका मुझसे क्या ताल्लुक?
जाहरन इसका ताल्लुक मेरी फैमिली से है और आपसे भी ताल्लुक है। दादी जान कह रही थी कि आप सब कुछ जानते हैं।
हेलो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बाद में तुमसे बात करता हूं। देखो, मैं तुम्हारे मरहूम दादा का मुलाजिम था, ना उनका वकील था ना रिश्तेदार। आप दूसरों से क्यों नहीं पूछते?
दूसरे? कौन दूसरे? मेरे तमाम रिश्तेदार या मर चुके हैं या इधर उधर बिखरे हुए हैं, मैं उनको जानता तक नहीं हूं।
तो ये तो मेरा मसला नहीं है ना। हेलो।
हेलो, सलाम अलैकुम अब्बू जान।
मोहम्मद बेटा, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता।
एक मिनट रुकिए अब्बू जान, कोई है वहाँ पर?
मैंने कहा ना बाद में बात कर।
पुलाद आया हुआ है अब्बू जान।
शैतान पर लानत हो।
मैं बात कर रहा हूँ, जॉइंट अकाउंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने सारी रकम निकाल ली है।
खुदा हाफिज। अच्छा, तो लगता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
आपने कहा कि मेरे वालिद के मुलाजिम थे, है ना?
हाँ था।
तो मुबारकबाद, बहुत तरक्की कर ली आपने, खूबसूरत घर है। ये आपका अपना घर है?
जी हाँ, लेकिन अगर तुम खरीदना चाहते हो तो मैं बेचने वाला नहीं हूं।
जबरदस्त, मेरे दादा के पास भी फ्रांस में इसी तरह का एक घर था।
दुनिया में इस जैसे और भी होंगे।
आपका घर भी मेरे दादा के घर से बहुत शबाहत रखता है। ये पेंटिंग्स, ये कालीने, ये सब हमारे एल्बम की पुरानी तस्वीरों में है। इस तरह के घर भी यहाँ ज्यादा हैं, है ना?
क्या मतलब?
आपके पास मेरे दादा की यादगारें बहुत ज्यादा हैं ना?
उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं।
ताल्लुक हो भी सकता है, आपको ध्यान
देखो लड़के, शायद तुम्हारे दादा जनरल ने तुम्हें ये बातें ना बताई हो, लेकिन अब जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं। मैंने इन तमाम चीजों के लिए जो तुम यहां देख रहे हो कीमत अदा की है। तुम्हारे ख्याल में इतने साल जनरल मर्जबान, तुम्हारी दादी और हत्ता खुद तुम्हारा खर्चा वहां कैसे चलता रहा? क्या जनरल की पेंशन पर शाही जिंदगी का मजा ले रहे थे? नहीं, इस पैसे की बरकत से जो मैंने तुम्हारे लिए भेजे, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, तुम में से किसी का भी नहीं। हमारी मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, जा सकते हो।
अभी खत्म नहीं हुआ है।
तुम क्या चाहते हो?
हकीकत।
तुम जाके अपनी दादी से क्यों हकीकत नहीं पूछ लेते?
क्योंकि नहीं हो सकता, आपकी बेटी मिलने का मौका नहीं देती, और खुद दादी जान ने भी कहा कि वो बस चीजें नहीं जानती जो आप बताएंगे।
तो बेहतर है जाओ और जाके अपने दादा जनरल से पूछो, वो वही शख्स है जो सब कुछ जानता है। मैं सिर्फ अवामिर बजा लाता था मुंह बमुंह।
मेरी फैमिली के बारे में क्या जानते हैं? मेरी फैमिली के बारे में आप क्या जानते हैं?
मैं फोन उठाने जा रहा हूं, वापस आऊं तो बेहतर है तुम्हें यहां ना देखूं। अगली बार यहां नजर आए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा ताकि इस मुल्क से बाहर फेंक दे। मैंने यहां पर तुम्हारे रहने की जमानत दी है, भूल तो नहीं गए? हेलो
हेलो,
सलाम अलैकुम मीरज खान, ईद का चांद बन गए हो?
ये तो मुझे आपसे कहना चाहिए उस्ताद।
मुझे तुमसे बात करनी है।
अफसोस है कि मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ।
हाँ अलबत्ता, तुम्हारी मसरूफियत की खबरें मिल रही हैं।
अरे आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि कभी हम गरीबों को भी पूछेंगे। आप बंदा नवाज बन गए हैं जनाब।
मजाक नहीं करो, हमने आपस में बात की थी।
किस बारे में?
कारखाने के बारे में।
हाँ अच्छा, तो इसका मतलब कारखाने के बारे में।
तो क्या हमने किसी और चीज के बारे में भी बात की थी?
अगर आपको याद नहीं है तो नहीं की होगी। हेलो
हेलो,
पुला तुम हो?
हाँ, तुम कौन हो?
मोहम्मद हूँ।
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, ठीक हो? तुम कैसे जानते थे मैं यहाँ?
तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो हमारा घर है और तुमने घर का एड्रेस खुद मुझसे लिया था।
हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
अरे छोड़ो पुला, तुम वहाँ क्या कर रहे हो?
बताया था ना कि पैकेट देने आया हूँ।
पुला झूठ मत बोलो, ये बताओ कि फोन तुमने क्यों उठाया?
क्योंकि बार बार फोन कर रहे हो।
मेरा मतलब ये है कि मेरे अब्बू कहाँ?
अच्छा, वो फोन पे बात कर रहे हैं।
और अम्मी कहाँ है?
तुम्हारी अम्मी? मुझे नहीं लगता कि घर पर होंगी, मैंने उनको नहीं
देखा। अजीब से बन गए।
कैसे अजीब से?
देखो पुलाद, आतिफा का मोबाइल तुमने क्यों उठाया?
डॉक्टर आतिफा का? मैं तुम्हारे वालिद से कह दूंगा कि तुम्हें उनसे काम था, वो जरूर फोन करेंगे। खुदा हाफिज।
बात सुनो मेरी।
अगर तुम आतिफा की बात कर रहे हो तो खुदा की कसम मैंने कई बार उससे बात की, आजकल मैं उसको राजी कर लूंगा।
सही कह रहे, कितना खुश हुआ मैं, अब तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मेरे लिए है।
ओह, वो कैसे?
ज्यादा अनजान मत बनो, ये दावा दायर करने और अदालत का क्या किस्सा है?
दावा? कौन सा दावा?
दामाद साहब, हम सारी उम्र दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे हैं, हमें गधा बनाने की कोशिश मत करो।
आपकी उस्ताजी में कोई शक नहीं है, अलबत्ता खुशी इस बात की है कि आपकी मुझसे बात सुन रहा हूँ।
तुम अब क्या कहना चाहते हो?
मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बात की थी, तय हुआ था कि कीमत आप बताएंगे और सौदा पक्का हो गया था, लेकिन उस दफा के बाद से आप गायब हो गए हमेशा की तरह।
हीराज, मुझे तुम्हारी कसम।
अरे अपने झूठे किस्सों के लिए मेरी जाने कसम मत खाइए वरना बहुत नाराज हो जाऊंगा मैं।
कौन सा किस्सा? खुदा शाहिद है।
मैं जानता हूँ आपने एक ग्राहक को तैयार कर रखा है और दूसरे को तलाश कर रहे हैं कीमत बढ़ाने के लिए। तिजारत का बहुत ही पुराना तरीका है फरजाम साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपको याद होगा।
अरे कैसा कीमत बढ़ाने का ड्रामा, माकूल आदमी अगर मेरे हालात इतने अच्छे होते तो अपने कारखाने के लिए कोई चारा करता।
अब भी देर नहीं हुई है।
ये तुम क्या कह रहे हो? हमने वादा किया था, तय किया था हमने।
ओहो, मुझे परेशान कर दिया आपने, क्या हुआ? दूसरा ग्राहक भाग गया या उसने कब कीमत लगाई?
कौन सा ग्राहक? मुझे अटैक हुआ था, मैं अस्पताल में एडमिट था।
ओए, इशारा करते गुलदस्ता लेकर हाजिर खिदमत हो जाता, खुदा सेहत दे।
यकीन नहीं आ रहा है? फोन करके आतिफा से पूछो।
जरूर जरूर, इत्तेफाक से आपसे पहले ही फोन किया था, आपके दामाद ने फोन उठाया।
मेरे दामाद ने?
जी हाँ, आपके दामाद ने।
गलत समझ रहे हो, जरूर बेचारी आतिफा।
बेचारी आतिफा? हाँ जी, उस आतिफा में इतनी सदाकत थी कि साफ साफ उसने इनकार कर दिया, लेकिन ये आप थे जिन्होंने हमारी सुलह को बहाना बनाकर ग्राहकों के सामने कारखाने की कीमत बढ़ा दी।
यकीन करो ईरज, ये सब गलत फहमी है, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम परेशान हो गए हो और कारखाने को खरीदना नहीं चाहते और समझती हो कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है तो मत खरीदो, लेकिन प्लीज अपना दावा वापस ले लो। मुझे इस बुढ़ापे में अदालतों के चक्कर मत डालो। मैं आज तक किसी कचहरी नहीं गया हूं। मैं बीमार हूं ईरज, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
अगर आप एक मिनट और बोलते तो मैं मुतासिर हो जाता बिल्कुल पहली दफा की तरह, लेकिन फरजाम साहब इस दफा मैं आपको फ्रॉड करने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे मेरा हक चाहिए।
कौन सा हक? क्या तुमने अपना हिस्सा बख्श नहीं दिया था?
जी हाँ, लेकिन वो पुरानी बात थी।
तुमने मुझे लिख के दिया था।
ठीक है, अगर वो मोतबर हुआ तो तुम अदालत में जीत जाओगे।
ईरज खान, तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे लड़ना नहीं चाहता।
जानता हूँ, जानता हूँ, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन अफसोस कि इस दफा मामला मुख्तलिफ है।
मैं साबित कर सकता हूँ कि तुमने अपना हिस्सा बख्श दिया है।
मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त तक कारखाना दिवालिया होकर बंद हो चुका होगा और उसकी कीमत आधी हो चुकी होगी।
ईरज,
शायद इस वक्त मैं उसकी जमीन भी ना खरीदना चाहूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आपने मेरा दूसरा रूप नहीं देखा। खेल बहुत हो गया फरजाम साहब, आप खूब जानते हैं कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इंसान को कभी कभी दुनिया के ऐसे हवादिस से वाकई में शर्माती है। शर्माती उन लोगों से जो दौलत के खातिर अपने करीबी दोस्तों हत्ता फैमिली से झूठ बोलते। ये पैसा क्या है, क्या है ये पैसा? एक बेवकत कागज जिसको बाज अफराद ने वक़्त दी है और दुनिया में बाज लोग इसके जरिए बावकत बने हुए हैं। नोटों ने दुनिया को तकसीम कर दिया है जीतने और हारने वालों में, गरीबों और मालदारों में। इस बीच सिर्फ इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे शबरोज सिर्फ ये बन गए हैं कि जिंदगी के नाम के एक तजारती इश्तिहार के मुकाबले में एक दूसरे के मुकाबले में आगे निकले। मैं अपना दावा वापस नहीं लूंगा फरजाम साहब, इसे इतना चलाऊंगा कि आप बाकी की जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते रहें, ताकि जो ज्यादतियां आपने झूठ बोल बोलकर मेरे साथ की हैं उसके 10 बराबर तुम्हारे साथ हों। दुनिया में किसी ने भी मेरे साथ आप जैसा सुलूक नहीं किया। मैं आपको बाप की नजर से देखता था, लेकिन अब ऐसा कर दूंगा कि मैं 100 बार आप दिन में आरजू करें मौत की, ताकि फिर कभी नोटों की खातिर अपनों से ऐसा सुलूक ना करें आप।
ईरज, खुदा के लिए,
क्या वाकई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे आप दिल से चाहते होंगे? मुझे तो नहीं लगता।
पुलिस को फोन करना चाहते हैं तो करें, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दें। अरे क्या हुआ?
अब्बू जान, क्या हुआ है अब्बू जान? ये सामने आओ।
मैं कसम खाता हूं,
मैं सिर्फ जनरल के अहकाम पर चलाता था।
हेलो
मर्जबान साहब।
जी हाँ।
जगाने के लिए मैं माजरत खा हूँ आपसे, आपके मेहमान आपसे मिलने आई हैं।
मेरे मेहमान?
जी, आपको शायद मिलना था उनसे, उन्होंने कहा है आपसे मिलने आई हैं।
जी मैं चंद मिनट तक नहीं चाहता हूँ।
मर्ज़बान साहब, वो साहिबा आपका इंतज़ार कर रही हैं वहाँ पर।
तुआ?
सलाम अलैकुम पुलाद साहब।
सलाम अलैकुम, फारसी जानती हैं आप?
जी हाँ, आप नहीं जानते थे क्या?
आप बहुत अच्छी फारसी बोल लेती हैं।
क्योंकि मैं भी आपकी हम वतन हूँ तकरीबन। मेरे वालिद ईरानी थे और मेरी अम्मी फ्रेंच। आपकी दादी ने यह भी आपसे नहीं कहा है? अलबत्ता ताज्जुब की बात नहीं है, आपको तो ढेर सारे काम थे और कभी कभी उनसे मिलने जाते थे।
मैंने आपको कभी भी फारसी बोलते नहीं देखा था।
ज़ाती वजूहात के बिना पर नहीं चाहती थी कि मेरे ऑफिस में कोई मुझे मुहाजर की नज़र से देखे।
लेकिन हम एक दफ़ा आपके ऑफिस से बाहर भी मिले थे, मुलाकात हुई थी।
जी हाँ सही, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था।
अच्छा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
असल में मैं मेहरबानों के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ।
तुम ये कहना चाहती हो कि मेहरबानों की वजह से ही रहना ही हो?
अलबत्ता सिर्फ इस वजह से नहीं, मेरे कुछ अपने भी जाती काम थे।
अच्छा, मेहरबानों इस वक्त अस्पताल में है। असल में ये सफ़र हमारे लिए ज़्यादा नेक साबित नहीं हुआ। उनके अस्पताल और रिसेप्शन का नंबर है, अलबत्ता अगर आप मिलना चाहती हैं तो। अब मैं चलता हूँ।
एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है।
ज़रूर, ज़ाती वजूहात के बिना पर होगी
और कुछ और मसाइल के बिना पर।
देखिए मोहतरमा, मैं आपको नहीं जानता, जानने की कोई वजह भी नहीं बनती। आप एक स्टूडेंट फिल्म बनाने मसरूफ थी, मेहरबानों की भी फिल्म बनाई आपने, लेकिन मुझे इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी मेरे सर पर इतने काम हैं।
जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है पुलाद साहब, मैं इतने दूर से इसलिए नहीं आई हूँ कि अपनी फिल्म मुकम्मल कर सकूं।
अच्छा, तो फिर क्या वजह है?
मैं आप और आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, शायद ऐसी कुछ बातें जो आप खुद भी नहीं जानते। आप बस इतना कीजिए कि मेरे साथ आइए ताकि सब कुछ जान सकें।
और अगर ना आना चाहूँ तो?
मुझे मजबूर मज़ीद इसरार करना होगा।
और अगर फिर भी ना मानूँ तो?
तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाऊंगी कि मुझे अफसोस है मर्ज़बान साहब, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है, कम अज़ कम आपके लिए। ये बात कैथरीन के बारे में है, आपकी बीवी। कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको जानना ज़रूरी है, लेकिन अगर फिर भी आप ना आना चाहते हैं तो मैं यहीं पर आपसे रुख्सत हो जाऊंगी। लेकिन यकीन रखिए, अगर आपका इरादा बदल गया तो मुझे कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। मेरा कल वापस जाने का टिकट है। ये भी बताती चलूं कि मैंने इस्तीफ़ा दिया है और दोबारा सेंट जर्मन वापस नहीं जाऊंगी। खुदा हाफिज़ पुलाद मर्ज़बान साहब।
بیچاری دیکھو تو کیا حال ہو گیا ہے، بغیر باپ کے اس بیمار ماں کے ساتھ کیا کرے گی خدا ہی جانتا ہے۔ خدا غریغ رحمت کرے ان کے والد کو، قصوروار خود تھے۔ اس بیچاری نے کتنا کہا کہ ابھی آپ کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ہسپتال سے نہ جائیں، ہارٹ کمزور ہے، لیکن نہیں مانے، یہ رہا انجام۔
تم کتنی سادی ہو، ہارٹ کی وجہ سے تھوڑی مرے ہیں۔
ارے یہ کیسے ممکن ہے، انہوں نے خود کہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے۔
یہ تو ہمیں بتانے کی باتیں ہیں، میں نے خود سنا، اپنے بھائی کے ساتھ فون پر کچھ اور کہہ رہی تھی۔
اچھا کیا کہہ رہی تھی؟
کسی کو بتانا نہیں، ہاں میرے خیال میں ان کے والد کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔
اچھا تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ،
آہستہ بولو، سن لیں گے۔ مجھے صحیح سے نہیں معلوم کہ قصہ کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اتنی چھوٹی بات بھی نہیں ہے۔ پتا نہیں ان کے والد کیا کرتے تھے کہ کس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا کہ اس طرح سے مر گئے۔
سچ سچ بتاؤ، تم کچھ جانتی ہو لیکن نہیں بتا رہی۔
ارے چھوڑو یار، ہم سے کیا تعلق، مفنے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں۔
سر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج بالکل ممکن نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، بس آپ مجھے ان سے ملنے دیں تاکہ ان سے کہوں کہ خود تشریف لے آئیں۔
عرض کیا نا، اور کتنی دفعہ عرض کروں۔
کیا ہوا ہے محمد؟
کچھ نہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ، بری بات ہے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔
فرجام صاحبہ آپ ہیں؟
جی آپ۔
میں معذرت چاہتا ہوں جو غلط ٹائم پر مزاحم ہوا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کرنا تھی کہ کچھ سوالوں کا جواب دینا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے حالات ایسے ہیں، اس لیے کہ آپ سے گزارش کرنا تھی کہ کل صبح تشریف لے آئیں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔
اگر آپ اس وقت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔
عاطفہ،
نامناسب ٹائم نہیں ہے، اصل میں آپ کے بھائی نے،
میری آج اور کل کی حالت میں زیادہ فرق نہیں ہوگا، اگر زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو میری ترجیح ہوگی کہ ابھی پوچھ لیں۔
جیسا آپ بہتر سمجھیں۔
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو کچھ جانتی تھی حرف پہ حرف سیکیورٹی والوں کو بتا دیا، دو دفعہ زبانی اور ایک بار تحریری، مزید کوئی بات نہیں۔
اگر آپ تھکی ہوئی ہیں یا مہمانوں کے پاس جانا چاہتی ہیں یا ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے جواب نہیں دے سکتی ہیں تو میں ابھی جا سکتا ہوں واپس، لیکن اگر تعاون کرنا چاہتی ہیں تو میں پوری بات اول سے آخر تک دوبارہ سننا چاہتا ہوں، پوری بات۔
جی دیکھیے، میں اس دن ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھی، سی سی او سے باہر آئی، اپنے کلینک میں گئی، معاف کیجیے گا، ایک بیمار کو دیکھ رہی تھی کہ ایمرجنسی الارم کی آواز کانوں میں پڑی۔ کمرے سے باہر آئی ہی تھی کہ ایک نرس نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں، کسی نے شرارتاً خطرے کی گھنٹی آن کر دی ہے۔ میں کلینک میں واپس آئی، یہاں تک کہ ایک گھنٹے بعد میڈم رزاقی نے آ کے کہا کہ،
رزاقی
سی سی یو وارڈ کے نرسز کی انچارج جس کی اس دن ڈیوٹی تھی۔
اور پھر
کچھ نہیں، بس صرف کہا کہ میڈم مرزبان کے سرحانے ایک خنجر ملا ہے۔
اس نے آپ کو کیوں یہ بات بتائی؟
یہ آپ اسی سے پوچھ سکتے ہیں، شاید ابھی یہاں ہوگی۔
میں خود آپ سے سننا چاہتا ہوں،
کیونکہ اس دن ڈاکٹر کے طور پہ میری ڈیوٹی تھی۔
صرف یہی؟ میں نے سنا ہے کہ کوئی اور وجہ بھی تھی۔
اچھا تو آپ اگر جانتے ہیں،
باقی سوالات کل نہیں پوچھ سکتے؟ جس طرح سے آپ پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ 5 منٹ میں ختم ہوگا۔
نہیں محمد، معاف کیجیے گا، آپ فرمائیے، اگر کوئی اور وجہ ہے تو مجھے جان کے خوشی ہوگی۔
یعنی آپ اس بات کا انکار کرتی ہیں کہ میڈم مرزبان کو پہلے سے جانتی تھی؟
پہلے سے نہیں، میں نے زندگی میں پہلی بار میڈم مرزبان کو اس دن دیکھا جس دن وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئی۔
یعنی ان کو نہیں جانتی تھی؟
ان کے شوہر کئی سال پہلے،
محمد بھائی انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا۔ تم جاؤ، مہمانوں کا خیال رکھو پلیز بھائی۔ پتہ ہے مرزبان صاحبہ کا شوہر بہت سال پہلے میرے والد کے جاننے والوں میں سے تھے.
جاننے والے یعنی دوست؟
بظاہر میں صحیح طرح سے نہیں جانتی کیونکہ وہ سالوں پہلے ایران سے چلے گئے تھے اور میرے والد کو بھی ان کی کوئی خبر نہیں تھی. یہ بہت پرانی بات ہے اس وقت کی کہ جب میں اور میرا بھائی بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے.
اتنی دور کے جاننے والے افراد کو یہ اجازت دینا کہ کسی بھی وقت ملاقات کر سکیں عجیب نہیں ہے؟
میں اپنی ڈیوٹی کی حدود کو جانتی ہوں اور ہمیشہ خیال رکھا ہے میں نے. اگر قانونی ٹائم سے الگ ٹائم میں ملاقات کی اجازت دی ہے تو وہ مریض کے جسمانی اور نفسیاتی حالت کی وجہ سے.
تو اس مسئلے کا میڈم مرزبان کے پوتے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ظاہراً ان کی دادی کے بستر پر خنجر ملا ہے اور خنجر کے اوپر ان کا نام لکھا گیا ہے.
ہاں جانتی ہوں، بس یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کس مسئلے کی بات کر رہے ہیں، قانونی اوقات سے باہر کے ملاقات کے بارے میں یا خنجر کے بارے میں؟ دیکھیے اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ
آپ میڈم مرزبان کے پوتے کو کتنا جانتی ہیں؟
اتنا ہی جتنا میڈم مرزبان کو جانتی ہوں. وہ بھی حال ہی میں ایران آئے ہیں اور مجھے ان کو پہچاننے کا موقع نہیں ملا ہے.
وہ جب بھی چاہتے تھے سی سی یو کے اندر آ سکتے تھے؟
جی نہیں.
لیکن کہا گیا ہے کہ وہ،
میں نہیں جانتی کہ آپ کو کیا کہا گیا ہے، بس اتنا جان لے کہ ان کی تمام ملاقاتیں ہمارے ساتھ ہم آہنگی کے بعد ہوتی تھی، حتیٰ قانونی ٹائم سے باہر کی ملاقاتیں بھی.
لیکن لگتا ہے جس دن سی سی یو سے خنجر ملا تھا اس دن ان کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی، ہے نا؟
جی صحیح ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ بات جانتے ہیں.
اتفاق سے یہی بات عجیب ہے، آپ نے کیوں ان کو اجازت نہیں دی؟
کیونکہ میڈم مرزبان کی ذہنی حالت ملاقات کے لیے مناسب نہیں تھی.
میں تو سوچ رہا تھا کہ میڈم مرزبان کی ذہنی حالت نامحدود ملاقاتوں کی وجہ سے بنی تھی، ملاقات منع کرنے کی نہیں.
کیونکہ پتہ ہے ہم مریض کی ذہنی حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. میڈم مرزبان کی عمر کے مریضوں اور اس کی بیماری کی وجہ سے ان کی کنڈیشن ایک جیسی نہیں رہتی ہے میرے خیال میں.
ایک اور سوال، کیا پولاد مرزبان صاحب کو علم ہے کہ اس کی دادی کی بیڈ پر خنجر ملا ہے کہ نہیں؟
نہیں.
بہت عجیب ہے، شاید وہ کچھ مدد کر سکتے. آپ نے کیوں ان کو نہیں بتایا؟
وجہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جناب، آج میرے والد کا سوئم ہے، کفن دفن کے مراسم میں میرے پاس ان کاموں کا ٹائم نہیں تھا. یہی
جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بہرحال میں پھر بھی تعزیت عرض کرتا ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ آج کے دن آپ کو زحمت دی، لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے. ہمیں رپورٹ دی گئی ہے اور ہمیں فائل مکمل کرنا ہے، اور احتمال بھی ہے کہ یہ بھونڈا مذاق ہو یا یہ خنجر خود میڈم مرزبان صاحبہ کا ہو. ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا ہے، ہے نا؟
ان کی کنڈیشن کے پیش نظر ان سے یہ بات نہیں پوچھی جا سکتی، کیونکہ اگر خنجر ان کا اپنا نہ ہوا تو یہ بات ان کے ذہن پہ منفی اثر ڈال سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
ہاں بات صحیح ہے. بہرحال ہمیں وقت دینے کا دوبارہ شکریہ. کوئی اور بات تو نہیں ہے جو آپ ہم سے کہنا چاہیں گی؟ مثلا اس دن سی سی یو میں کوئی مشکوک فرد تو نہیں ملا، یا خطرے کا علام بجنے سے پہلے تو کسی نے خنجر وہاں نہیں دیکھا، یا کوئی اور بات جو آپ کو یاد آ رہی ہے؟
معذرت کے ساتھ، مہمان انتظار کر رہے ہیں، سوری جو آپ کے ساتھ دروازے تک نہیں جا سکتی.
ہمیں احساس ہے میڈم فرجام.
اور ہاں اس دن جب میں سی سی او سے باہر آئی تو ایک میل نرس کو دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا. سوچا نیا آیا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی پھر کبھی ہسپتال میں نہیں دیکھا.
آپ نے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں؟
نہیں، مجھے تو अब जब आपने कहा है तो
उसका होलिया वगैरह कुछ याद है?
जी 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 अभी बताती हूँ।
बहुत खूब, अच्छा पॉइंट था। देखिए मैडम फरजाम, ये तकरारी सवालात कभी कभी काम आते हैं। आपको जनाब मर्जमान का कुछ पता है?
नहीं।
आपकी तरफ से उसकी दादी की मदद और आपके वालिद के साथ जान पहचान को मद्देनजर रखते हुए बहुत अजीब है कि यहां नहीं आए हैं। जरूर नहीं जानता होगा।
क्यों नहीं? मेरे ख्याल से जानता होगा।
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या?
हाँ। आपके सवालात खत्म नहीं हुए?
आपकी कौन सी गाड़ी थी?
ये क्या मजाक बना रखा है आपने? मैं किस लिए इन सवालों का जवाब दूं?
तुम इसका सबब जानते हो।
मेरे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का कैथरीन से क्या ताल्लुक हो सकता है?
जरा सोचिए, वाकई में कोई ताल्लुक नहीं है।
तुम कौन हो? मैं मजीद एक सेकंड भी यहां नहीं रुक सकता। इसका क्या मतलब बताओ? तुम मुझे कैदी बना के रखना चाहती हो?
अगर तुम्हें पसंद हो तो ये समझो कि मुझे कोई एतराज नहीं है।